नमस्कार, यह आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत विकासशील भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तेजी से अपनी तकनीक नींव रख रहा है। उन्होंने युवा पेशेवरों से विश्वस्तरीय तकनीकों के उत्पादन डिजाइन करने का आग्रह किया। प्रवर्तन निदेशालय ने ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप मामलों में गूगल और मेटा को नोटिस जारी किया। दमिश्क पर इजरायली हमलों के बाद इसराइल और सीरिया युद्ध विराम पर सहमत हुए। मौसम विभाग ने आज केरल और पश्चिमी राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश का अनुमान व्यक्त किया। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश के 7 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट एवं अन्य 15 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। भारतीय महिला शतरंज विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में 4 खिलाड़ियों के साथ पहुंचने वाला पहला देश बन गया है। और महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच लंदन के लॉर्ड्स में 3 मैचों की श्रृंखला के दूसरे वनडे में बारिश के कारण टॉस में देरी। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि विकासशील भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तकनीकी आधार तेजी से तैयार किया जा रहा है। आज सुबह IIT हैदराबाद के दीक्षांत समारोह में भारत के तकनीकी संचालित भविष्य पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने छात्रों से विश्व स्तरीय तकनीकें और उत्पाद तैयार करने का आग्रह किया। श्री वैष्णव ने इस वर्ष भारत की पहली स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप के निर्माण की घोषणा की, जिसके तहत 6 सेमीकंडक्टर संयंत्र निर्माणाधीन है, जिससे भारत एक अग्रणी वैश्विक खिलाड़ी के रूप में स्थापित होगा। श्री वैष्णव ने रेलवे सुधारों पर भी बात की और बताया कि पहली बुलेट ट्रेन 2027 में शुरू की जाएगी। साथ ही चेन्नई में वंदे भारत संस्करण में 3 निर्माण भी किए जाएंगे।
The first bullet train project is also rapidly progressing. We should see a bullet train running in 2027, somewhere in August or September. Once we build the first one, we put it in our BJP's manifesto that we'll have 3 more corridors, one in south, one in north, one in east. The first one is getting built in the west part of our country.
शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारत का वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनना तय है और इस लक्ष्य को हासिल करने में प्रत्येक नागरिक की भूमिका होगी। केरल में IIT पलक्कर में दीक्षांत समारोह में उन्होंने विद्यार्थियों से परिवहन, आवास, चिकित्सा सुविधाओं और कृषि सहित विभिन्न क्षेत्रों में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के निर्माण में अपनी भूमिका निभाने का आग्रह किया। शिक्षा मंत्री ने 328 विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए। श्री प्रधान ने कहा है कि IIT पलक्कर विकसित भारत में योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए नशा मुक्त युवा के महत्व पर जोर दिया। आज वाराणसी में आज युवा आध्यात्मिक सम्मेलन के प्रारंभिक सत्र को संबोधित करते हुए श्री मांडविया ने नागरिकों से राष्ट्र निर्माण को प्राथमिकता देने और नशा मुक्त भारत अभियान में शामिल होने की अपील की। उन्होंने सभी लोगों से इस अभियान में अपने साथ कम से कम 5 युवाओं को जोड़ने की शपथ लेने का भी आह्वान किया।
हमें हमारे देश को विकसित भारत के स्वप्न को साकार करने के लिए हमें युवा फॉर नशा मुक्त विकसित भारत बनाना है। आज कई देश एडिक्शन के हिसाब से कैसी उसकी बर्बादी हुई है देखा है। हमें हमारे देश को इस बर्बादी से बचाना है, लेकिन उसकी जिम्मेवारी मोदी जी युवाओं को देना चाहते हैं। युवा वो जिम्मेवारी का निर्वहन करे। दोस्तों, जब युवा संकल्प करता है तब रिवोल्यूशन होती।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया के लेख का उल्लेख करते हुए कहा है कि युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन नशा मुक्त भारत के निर्माण में एक बड़ा कदम है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि श्री मांडविया ने लेख में विस्तार से बताया है कि ये शिखर सम्मेलन नशा मुक्त भारत के निर्माण में कैसे मदद कर रहा है। प्रवर्तन निदेशालय ने ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप मामलों में तकनीकी कंपनियों गूगल और मेटा को नोटिस जारी किया है। सूत्रों के अनुसार निदेशालय ने दोनों कंपनियों के प्रतिनिधियों को सोमवार को दिल्ली मुख्यालय में पेश होने के लिए बुलाया है। एजेंसी ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप्स के प्रचार में डिजिटल प्लेटफॉर्म की भूमिका की जांच कर रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस के अंतर्गत काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर CIK इस क्षेत्र में 4 जिलों में 10 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रही है। CIK अधिकारियों ने कहा है कि ये तलाशी अभियान आतंकवादी स्लीपर सेल के आतंकवाद से जुड़े अपराध की जांच और सीमा पार जैसे जैश ए मोहम्मद गुट के आतंकवादी कमांडर अब्दुल्ला गाजी द्वारा संचालित भर्ती मॉड्यूल के संबंध में चलाई जा रही है। अधिकारियों ने बताया है कि ये अभियान दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में एक स्थान, मध्य प्रदेश में गांदरबल जिसमें से 6 स्थानों, श्रीनगर में एक और बडगाम जिले में 2 स्थानों पर की जा रही है। डाक विभाग ने अगली पीढ़ी के लिए APT एप्लीकेशन शुरू करने की घोषणा की है। ये एप्लीकेशन बेहतर उपयोग, तेज सेवा और अधिक ग्राहक अनुकूल इंटरफेस प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि इस उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर निर्बाध और सुरक्षित बदलाव करने के लिए सोमवार को एक निश्चित समय निर्धारित किया गया है। उत्तर प्रदेश के यमुना एक्सप्रेसवे पर आज सुबह 2 अलग अलग दुर्घटनाओं में 6 लोगों की मृत्यु हो गई है और 19 लोग घायल हुए हैं। मथुरा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने बताया है कि सभी घायलों की हालात स्थिर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे को आज उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे के साहस और वीरता की कहानियां देशवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन रही है। गृहमंत्री ने मंगल पांडे को देशभक्ति का प्रेरणा स्रोत बताया है। तुर्की में अमेरिका के राजदूत टॉम बैरक ने कहा है कि सीरिया पर इसराइल के हमले के बाद दोनों देश युद्धविराम पर सहमत हो गए हैं। इसराइल ने दावा किया है कि ये हमले अरब धार्मिक अल्पसंख्यक द्रूज समुदाय की रक्षा के लिए किए गए थे। दोनों देशों के बीच युद्धविराम की घोषणा ऐसे समय में हुई है जब सीरिया के दक्षिणी सवेदा प्रांत में द्रूज समूहों और बेडोइन कबीलों के बीच फिर संघर्ष शुरू हो गया है। संघर्ष में 300 से अधिक लोग मारे गए हैं और हजारों लोग विस्थापित हुए हैं। चीन ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की है और इसे क्षेत्र के देशों की क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए आतंकरोधी सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया। इस आतंकी हमले में शामिल होने के लिए अमेरिका द्वारा पाकिस्तान स्थित लश्कर ए तैयबा के सहयोगी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किए जाने पर चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि चीन सभी तरह के आतंकवाद का विरोध करता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वॉल स्ट्रीट जर्नल और उसके मालिकों पर 10 अरब डॉलर की मानहानि का मुकदमा दायर किया है। अखबार के मालिकों में श्री रूपर्ट मॉडरिक और श्री डॉन जॉनसन सहित अन्य शामिल हैं। मायामी में संघीय अदालत के दायर मानहानि के मुकदमे में श्री ट्रंप ने आरोप लगाया है कि इस खबर ने उनकी प्रतिष्ठा और वित्तीय स्थिति को नुकसान पहुंचाया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के प्रकाशित समाचार में कहा गया था कि वर्ष 2003 में जेफरी एप्सटीन को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने वालों की सूची में श्री ट्रंप का नाम भी शामिल था। मौसम विभाग ने आज माहे और पश्चिमी राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर अत्यधिक तेज वर्षा की चेतावनी जारी की है। विभाग ने कहा है कि अगले 3 दिनों तक कोंकण, गोवा और कर्नाटक के विभिन्न भागों में मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ आर के जेनामणि ने कहा है कि आज उत्तर पश्चिमी राजस्थान में अत्यधिक तेज वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने केरल में अत्यधिक तेज वर्षा की चेतावनी भी जारी की है। पूरे राज्य में 23 जुलाई तक मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की गई। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश के 7 जिलों ईस्ट कमिंग, ईस्ट सियांग, लोअर सियांग, लपारादा, लोहित, नामसाई और चांगलांग के लिए ऑरेंज अलर्ट एवं अन्य 15 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार इन जिलों में अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ बिजली गिरने और बहुत तेज बारिश होने की संभावना है। हॉकी इंडिया ने आज सीनियर महिला राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर के लिए 40 सदस्यीय संभावित खिलाड़ियों की घोषणा की है। ये शिविर 21 जुलाई से 29 अगस्त तक बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा। फिडे महिला शतरंज विश्व कप में ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी, डी हरिका, आर वैशाली और अंतर्राष्ट्रीय मार्शल दिव्या देशमुख क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। जॉर्जिया में बटोमी में प्री क्वार्टर फाइनल में कल इन चारों खिलाड़ियों ने अपने अपने टाई ब्रेक मैच जीतकर ये उपलब्धि हासिल की है। और महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच लंदन के लॉर्ड्स में 3 मैचों की श्रृंखला के दूसरे वनडे में बारिश के कारण टॉस में देरी हुई। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।